थी, हम अभी जानते हैं कि ये जो क्लास शुरू होने जा रहे हैं, तो जो इंदिरा दीदी है उन्होंने स्वयं अपना परिचय फर्स्ट डे हमको जब मिले उन्होंने अपना परिचय दिया था, फिर भी आज हम उनको और हम उनके साथ भी रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से करीब से जानते हैं, फिर भी हम आपका दीदी अभी 2 मिनट में परिचय देते हैं। आप 87 से ज्ञान में चल रहे हैं और आपने 5 साल, जब शुरुआत 87 में ज्ञान में चले, 5 साल आप ज्ञान सरोवर में स्पार्क विंग में रमेश भाई जी के ऑफिस जो है उस ऑफिस में आपने सेवा दी और मनोबल मनसा सेवा जो बुक है हम सभी पढ़े भी हैं और उसमें से कई प्रेरणा भी मिला है मनसा सेवा के लिए। आपने वो बुक लिखे हैं, उसके बाद फिर आपने हमारे गामदेवी सब जोन में 3-4 सेंटर पर भी रहे हैं और साथ साथ फिर 2009 में बाबा ने फिर से आपको इस बेहद घर पांडव भवन में सिल्लू दीदी के साथ आपको फिर सेवा की, बेहद सेवा की, जो कि सिर्फ इंडिया नहीं देश और विदेश की सेवा के लिए आपको बाबा ने फिर से निमित्त बनाया। 2009 से आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और आज बहुत सुंदर टॉपिक आपने हम सभी भाई बहनों को सुनाएंगे, अपने अनुभव भी उसमें शेयर करेंगे कि हम सिर्फ सो मान लेते हैं कि हम शिव शक्ति हैं, परंतु शिव शक्ति पांडव सेना है, परंतु सचमुच शिव शक्ति का जो स्वरूप है उसको हम स्वरूप को कैसे जीवन में धारण करें, आप अभी हम सबको अपने अनुभव से प्रेरणा देंगे। हम आपका एक हाथ से सभी भाई बहन आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। तो वैसे भी मार्च का मास चल रहा है जिसको हम कहेंगे दादी गुलजार के अव्यक्त होने का मास। दादियां हमारी सचमुच शिव शक्ति बनकर रही और तभी जाकर उन्होंने अपनी परफेक्शन को प्राप्त किया, तो हमें भी उनके ही जैसा शिव शक्ति बनना है। तो कैसे शिव शक्ति बने हम भी? शिव शक्ति का सिंपल अर्थ अगर करें, इस शब्द को संधि विच्छेद करें, शिव प्लस शक्ति, और बाबा के ज्ञान के अनुसार शिव है परमात्मा और शक्ति है आत्मा। तो कैसे आत्मा और परमात्मा सदा ही कंबाइंड, हाँ, हमारी स्थिति ऐसे रहे कि मैं आत्मा उस परमात्मा से सदा ही कंबाइंड रहूं। दादियों में हमने यही देखा, तो अभी हमारा भी वही समय है, क्योंकि बाबा सिर्फ एक या दो की मदद से स्वर्ग नहीं बनाने जा रहे हैं, बाबा हम सब बच्चों का भाग्य बनाने जा रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना कि बाबा तो सर्वशक्तिवान है, चाहे तो जादू की एक छड़ी घुमा ले और स्वर्ग बन जाए, लेकिन फिर उस स्वर्ग में जो भाग्य चाहिए वो तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उस आधार से उसको स्वर्ग में वो पद मिलेगा, वो भाग्य मिलेगा। तो हमारे ही भाग्य को ऊंचा उठाने के लिए बाबा कहते, तुम सभी मेरे बच्चे स्वर्ग की स्थापना में मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। तो उसके लिए हमें अपना वो शिव शक्ति स्वरूप कंबाइन स्वरूप मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो क्या उसके लिए जरूरत है वो हम छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे कहा आज के टॉपिक का जो मतलब आज की क्लास का जो टॉपिक है जो विषय है शिव और शक्ति स्वरूपा देवी सती। यहाँ पे जो शब्द सती आया है थोड़ा उसको क्लियर कर दूं क्योंकि सती शब्द कॉमनली दुनिया में भी यूज होता है। रानी सती लाज फलानी सती लाज ये वो सती की बात नहीं है लेकिन ये कौन से सती की बात है कि जो शास्त्रों में कहानी आती है शिव और सती का विवाह और फिर दूसरा आता है शिव और पार्वती का विवाह। क्यों सती को दोबारा जन्म लेना पड़ा? पहले तो उसकी पत्नी बन गई फिर दोबारा जन्म लेकर फिर से क्यों उसकी पत्नी बनना पड़ा? वो पहले ही जन्म में क्यों नहीं उसकी सदा के लिए उसकी अर्धांगिनी वामांगिनी बनकर रही? तो उस कहानी से हमें क्या पुरुषार्थ करना है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सती कौन है? तो कहा दक्ष की पुत्री है। और दक्ष कौन है? तो कहा ब्रह्मा का मानस पुत्र है। सती भी मानस पुत्री है मतलब कोई ऐसे कुखवंशावली की बात नहीं है इनमें, ये हमें अंडरलाइन करना होगा। पुत्र पुत्री जब भी शब्द यूज होगा इन कहानियों में ये कोई कुखवंशावली की बात नहीं है। तो सती है दक्ष पुत्री और फिर दक्ष है ब्रह्मा का पुत्र। डेफिनेटली हम सभी कौन है? ब्रह्मा की संतान है। क्या कहलाते हैं हम अपने आप को? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो दक्ष कौन है? दक्ष कौन है? ब्रह्मा कुमार है। लेकिन तो वो भी एक ब्रह्मा कुमार है अर्थात ब्रह्मा की संतान है परंतु जब दक्ष शब्द आया है जैसे हम सब भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के पहले हमारी एक भौतिक पहचान थी, है ना? आज भी कोई पूछता है बाहर वाला तो अपनी भौतिक पहचान हम देते हैं। तो दक्ष भी क्या है? उसकी पहचान कि वो दक्ष है। दक्ष माना क्या होता है? जो एक्सपर्ट होता है किसी चीज में, जो माहिर होता है, जिसके पास कुछ कुशलता होती है, कुछ स्किल होती है, कुछ टैलेंट होता है, कुछ एफिशिएंसी होती है, कुछ कैपेबिलिटी होती है, तब कहते फला व्यक्ति ना इस काम में बिल्कुल दक्ष है, कहते हैं ना हम। तो ये जो दक्ष है हम और आप में से ही कोई एक आत्मा है कि जिसके पास क्या है, मतलब कहानी तो एक को रिप्रेजेंट करके सबके लिए होती है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अकेले एक को थोड़ी मैं कान गीता सुनाने आया हूं, लेकिन किसी एक को सामने रखकर वो सर्व के लिए सुनाया जा रहा है। ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल एक आत्मा को सामने रखना पड़ेगा ना। तो दक्ष को रखा है कि एक वो आत्मा जो दुनियावी स्किल्स में लौकिकता में भौतिकता में किसी न किसी बात में दक्ष है और हर एक होता ही है। उसी आधार से तो हम अपना व्यापार कहें अपना जॉब कहें या अपना घर बार कहें उसी स्किल के आधार से तो हम चला रहे होते हैं, है ना? तो उसके पास दक्ष माना जिसके पास स्किल है। और फिर शब्द क्या जोड़ा है? दक्ष प्रजापति शब्द जोड़ा है, दक्ष प्रजापति। और प्रजापति का अगर संधि विच्छेद करें प्रजा का पति या यूं कहे कि प्रजा का राजा जैसे कि राष्ट्रपति, है ना? वो एक आत्मा है जिसके पास लौकिकता वाली कुशलताएं हैं, टैलेंट हैं, स्किल्स हैं। और फिर जब ब्रह्मा कुमार, कहा ना ब्रह्मा कुमार है, तो ब्रह्मा कुमार बनते ही ज्ञान मिलता है, तुम तो इंद्रियों के राजा हो, तुम तो क्या हो, इंद्रियों के राजा हो, तुम्हें क्या करना है, इंद्रियों पर राज करना है। तो इंद्रियां हमारी क्या हो गई, प्रजा। तो हो गए प्रजापति दक्षम, हुए या नहीं हुए हम? अब ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति से कहा, क्योंकि दक्ष प्रजापति की पत्नी है प्रसूति, जिससे सती का जन्म हुआ है। प्रसूति माना क्या होता है, आप अगर दुनिया में जाएंगे जो मैटरनिटी होम होते हैं, हिंदी में क्या लिखा होता है, प्रसूति गृह लिखा होता है। तो क्या होता है प्रसूति माना, एक लाइफ क्रिएट हो रही है वहां, एक जीवन को जन्म मिल रहा है वहां पर। और दक्ष प्रजापति, प्रजा पर राज्य करना है उसने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सती को जन्म दिया। अर्थात कि हमारे पास दुनिया की कौशल है, टैलेंट है, और फिर हम बाबा के बने, साथ साथ हम ब्रह्मा कुमार बन गए फिर, ठीक है, ब्रह्मा कुमारी बन गए। तो बाबा ने ज्ञान दिया कि बच्चे तुम्हारे अंदर सत्यता है, तुम्हारे अंदर दिव्यता है, तुम्हारे अंदर शुद्धता है, तुम्हारे अंदर पवित्रता है, परंतु वो क्या है, सोई पड़ी है, उसको जागृत करो। तो उस सत्यता को जब हम जागृत करते हैं, उस पवित्रता को, उस डिविनिटी को, मानो हमने सत्यता को जन्म दे दिया, सती हमारे जीवन में आ गई। और फिर ब्रह्मा ने दक्ष को यह भी कहा, इस सती का संयोग शिव के साथ ही है, इसका विवाह तुम्हें शिव के साथ ही कराना होगा। तो कहते जब सती का जन्म हुआ है तो बाल्यकाल से ही वो शिव भक्त है, और बाल्यकाल से ही मन मस्तिष्क में एक इम्प्रेशन, एक छवि डाल दी है, एक छाप डाल दी है कि मेरे होने वाला पति तो शिव जी ही है। और उस शिव जी को वह पति के रूप में पाने के लिए वो तपस्या भी कर रही होती है, जिसका अर्थ है कि बाबा ने जब हमें कहा कि जैसे हम नए जिज्ञासुओं को हम कहते हैं कि भगवान को हम याद करते हैं, लेकिन हमारी मेथड सही नहीं होने के कारण हम याद करते हुए भी हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे और उससे हम दूर रह गए हैं, और इसीलिए उसकी कृपा दृष्टि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, उसका हम क्या खुलासा देते हैं, जो हमें बाबा ने बताया कि दो शक्तियों का मिलाप तभी हो सकता है जब उनकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी। भक्ति मार्ग में हम भगवान को शांति का सागर, पवित्रता का सागर, बहुत ऊंची ऊंची उसकी महिमा करते हुए याद कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की स्थिति या तो अशांत है, टेंशन में है, उसको प्रेम का सागर कह रहे हैं, और इधर किसी के साथ कुछ अनबन है, नफरत हो गई है, उस नफरत वाले भाव से गुजर रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, कोई बात आ गई है, टेंशन में है और भगवान को याद कर रहे, तो उधर शांति की फ्रीक्वेंसी है, इधर अशांति की फ्रीक्वेंसी है, उधर आनंद की फ्रीक्वेंसी है, इधर गम की फ्रीक्वेंसी है, उधर प्रेम की फ्रीक्वेंसी है और इधर घृणा की फ्रीक्वेंसी है। कनेक्ट होंगे नहीं होंगे? नहीं हुए ना भक्ति मार्ग में, यही सिखाया ना आने वाले हर जिज्ञासु को। हमने भी वही सीखा ज्ञान मार्ग में आके, और हर नए जिज्ञासु को भी हम यही ज्ञान देते हैं। तो एक्चुअली ब्रह्मा ने मतलब ब्रह्मा के द्वारा जो शिव ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान हमें मिला और उस ज्ञान ने हमें कहा सत्यता तुम्हारे अंदर है, सात्विकता तुम्हारे अंदर है, उसको जगाओ और उसको जगा के उसको नरिश करो। ऐसे नहीं कि जगाओ और फिर सुला दो, फिर उसको जगाए रखो। जैसे कहते हैं ना दीप जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीप एक बार जल गया अब जगता ही रहे उसके लिए एफर्ट्स करने होते हैं। जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा बने रहना यह बहुत बड़ी बात है। तो कहा तपस्या करो, तो सती तपस्या में लग गई है, अर्थात सात्विकता को दिन प्रतिदिन, दिव्यता को, पवित्रता को बढ़ाती जा रही है, जैसे कि हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कर रहे हैं। रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, ज्ञान के कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो यहाँ वहां के यूट्यूब में इसमें उसमें इसकी क्लासेस सुन के अपनी क्लैरिटी को बढ़ाते हैं और उस अनुसार अपने पुरुषार्थ में, अपने पवित्रता में उसकी इंटेंसिटी को, उसके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम सब लगे हुए हैं, है ना? तो जब हमारी वो फ्रिक्वेंसी सचमुच थोड़ी स्थिर होती है और हम बाबा को याद करेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तभी कहा कि ये सती बनी ही किसके लिए है? शिव के लिए। कि जब सात्विकता होगी, जब दिव्यता होगी, जब पवित्रता होगी, इजी है उसके साथ कनेक्ट हो जाना और कनेक्टेड रहना भी। कनेक्ट होके वापस डिसकनेक्ट हो जाना नहीं, कनेक्टेड रहना। तभी वो शादी की बात आई, शादी माना ही अब दोनों क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे, जुदा नहीं होंगे। अब तब का इस सती का विवाह शिव से होना है, तो सती तपस्या करके बड़ी हुई है और उसका विवाह शिव से करा दिया है, अर्थात अब शिव और शक्ति कंबाइन। तो हमने भी अनुभव किया है ये सब कि हम अभी बाबा के साथ कंबाइन रह पाते हैं। लेकिन फिर एक घटना घटी है। क्या घटना घटी है सती के जीवन में? घटना कि कहा कि दोनों का ब्याह हो गया तो कैलाश पर चले गए और दोनों पर्वत पर रहने लगे वहां पर। फिर क्या हुआ कि सती जो शिव से कनेक्टेड है थोड़ा सा स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो उसका ध्यान बाहर की गतिविधियों पर भी पड़ा। देखा कोई सज धज के कहीं जा रहे हैं तो मन में संकल्प आता है ये इतने सारे लोग, देवतागण, ऋषि लोग, ये सब सज धज के जा किधर रहे हैं? तो कहा नंदी कहो या उसकी सखिया कहो, उसके द्वारा पता करवाया और पता चला कि ये तो आपके ही पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है और उसके इनविटेशन पर वो सब वहां जा रहे हैं। तो पहली बात बाहर की दुनिया में झांका, आंखों ने देखा। दूसरी बात संदेश सुना कानों ने। ये दो बातें जब हुई उसके साथ, अब उसके मन में व्याकुल था, मेरे पिता के घर में यज्ञ, लोगों को इनविटेशन, सब लोग जा रहे हैं और मैं उससे बेखबर, मुझे कोई इनविटेशन नहीं, मैं बेखबर। तो पति से कहती है शिव जी से और उसको मनाती है। हो सकता है कुछ अरेंजमेंट करने में, नहीं शादी में, कुछ यज्ञ में, कुछ भी कार्य करने होते, कितने बिजी हो जाते हैं ना हम लोग। अभी देखो आप लोगों को सिर्फ नीचे शिफ्ट करना है टाइम पर, ताकि कल आप लोग अच्छी से कर सके। बहने कितनी एंगेज हो गई है ना। तो उसमें तो सती कहती है, बातें बनाती है कि पिता के घर में यज्ञ है तो हमें चलना होगा, आप भी चलो। कहते लेकिन हमें कोई इनविटेशन थोड़ी है। तो कहती है इनविटेशन नहीं है, हो सकता है कि बहुत व्यस्तता के कारण भूल गए हो। और फिर और आगे क्या कहती है, वैसे भी मेरे प्यारे पति जी शास्त्रों में तो लिखा है कि गुरु, पिता और मित्र, इनके पास जाने के लिए निमंत्रण न भी हो तो बेहिचक हम उनके पास जा सकते हैं। तो शिवजी उसको जवाब में कहते हैं, हाँ प्यारी, शास्त्रों की बात बिल्कुल सही कही तुमने, लेकिन अगर कोई जानबूझकर भी इनविटेशन नहीं दे तो फिर उसके पास नहीं जाना चाहिए। फिर वो भले ही क्यों नहीं गुरु हो, क्यों नहीं पिता हो, क्यों नहीं मित्र हो, जानबूझकर अगर कोई इनविटेशन नहीं देता है, क्लियरली उसके अंदर में कुछ मैलापन है, कुछ मलिनता है, कुछ द्वेष, कुछ वैर भरा पड़ा है, तो ऐसे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो तो पुत्री है ना उसकी, वो तो दक्ष की पुत्री है ना। तो शिव जी ने उसको थोड़ा समझा दिया और उसके पास बात मौन हो गए, क्योंकि उसको पता था ये दक्ष की पुत्री है। अर्थात भगवान को पता है, भगवान ने ज्ञान तो दिया है हमें, लेकिन भगवान को पता है ये सात्विकता तो मैंने इनके अंदर जगाई है। क्योंकि सात्विकता के ऊपर किसकी लेयर चढ़ी हुई थी, राजसिकता और तामसिकता की, विकारों की लेयर्स चढ़ी हुई थी, भौतिकवादिता की, स्किल्स की। जितना व्यक्ति के पास भौतिक स्किल ज्यादा होता है ना, ईगो उतना ज्यादा बढ़ता है। एक बार किसी ने, भाई ने कहा, मैंने ऐसे ही कहा, आप भी बड़े हैं, आप भी गाड़ी ले लो ना, एक आपको भी आने जाने में सुविधा होगी। इतना सुंदर जवाब दिया, देखो बहन जी, एक एक व्यक्ति गाड़ी ले तो पेट्रोल भी खर्च होता है। चलो वो बात तो इतनी ये नहीं है, लेकिन महत्व की बात उसने क्या कही कि देखो बहन जी, आज अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है ना, तो गाड़ी जाने के लिए चाहिए तो सही ना, तो जिनके पास है हम उनके पास जाके नम्रता से बात करते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाए रखते हैं। ये कल गाड़ी आ जाएगी ना, ईगो आ जाए, क्या जरूरत पड़ी मुझे उसके पास जाने की, मैं क्या जाऊं, मैं मालिक हूं ना। तो कहने का तात्पर्य, दुनियावी अचीवमेंट्स जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ईगो भी ज्यादा बढ़ता है। तो ये तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हमने थोड़ा जीवन में स्थान दिया तो सात्विकता जगी, परंतु अभी वो विकारों वाली लेयर तो अभी तक वही है ना, वो लेयर तो अभी पूरी नहीं हटी है ना। तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता रहता है, और इसलिए कहा कि शिव जी ने थोड़ा सा समझा दिया और चुप हो गए, क्योंकि शिव जी को पता है ये दक्ष पुत्री है, लौकिक दक्षताओं का ईगो का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, इसलिए वो जरूरी नहीं है कि मेरा मानेगी, अपनी बुद्धि तो चलाएगी, अपनी मत तो चलाने वाली है, क्योंकि वो भगवान है, जानता है ना कि क्यों आत्माएं भी वशीभूत हो रही है, बाबा ने कहा ना दोष नहीं, ये साइकिल ऐसा है। तो भगवान जानता है, तो शिव जी इसलिए कहते हैं पता है दक्ष पुत्री है आखिर, तो ये अपनी बुद्धि चलाए बिना रहने वाली नहीं है। और इसने बुद्धि चलाई, वही बात थी आज मुरली में। प्रश्न उत्तर क्या था? हाँ, बाप की श्रीमत पर हाँ चलने से शक्ति मिलती है, पर किसको? यथार्थ यथार्थ हमें श्रीमत पर चलेंगे तो ही हमको उस श्रीमत को जीवन में लाने की शक्ति मिलती है। अगर उस श्रीमत को फॉलो करेंगे उसके बिना, माना उस श्रीमत के अगेंस्ट अपनी मत नहीं चलाएंगे तो। लेकिन उसने क्या की, अपनी मत, शिव जी को शास्त्रों की बातें सुना रही है। हम भी यही कहते हैं ना कई बार, अरे शिव बाबा को छोड़ो ना, शिव बाबा को कोई शरीर थोड़ी है, समाज में हमको रहना है। हाँ, तो थोड़ी सी बुद्धि चला लेते हम भी। तो ये हमारी कहानी है या नहीं है बोलो। तो वो भी उसको साइड में रख के अपनी बुद्धि चला के कहती मैं तो चली। तो वो चलती है और आखिर शिव जी उसके पति है ना, तो नंदी को और गणों को कहते तुम साथ साथ जाओ, आखिर मेरी पत्नी है वो। अकेले कैसे छोड़ूंगा, अर्थात उसके ऊपर अपने डिवाइन पावर की सकाश दे रहे हैं उसको। गण माना क्या, गुण ना, अपने गुणों की शक्तियों की पावर उसके साथ में। लेकिन उसको सतर्क बीच पहले ही कह दिया था उन्होंने कि जानबूझकर अगर कोई इनविटेशन ना दे रहा हो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और उसको पता है दक्ष तो पिता है माना अपना है, और जब अपनों के पास जाकर अपमान हो तो वो जो अपमान का दुख होता है मृत्यु के दुख से कम नहीं होता है वो। इसीलिए आज ब्राह्मण क्या कहते, बहन जी बाहर वाले ठीक से नहीं चलते हैं ना, तो हम फिर भी सहम जाते हैं। पर ये ब्राह्मण हो कैसे करता है मेरे साथ, है ना, उसका दुख ज्यादा होता है ना। तो शिव जी ने उनको सतर्क तो कर दिया था, अलर्ट तो कर दिया था, लेकिन मनमाने की अपनी बुद्धिमत्ता चलाई और गई। और गई तो देखती है कि सब लोग पहुंचे हुए हैं, देवता है, ऋषि सब लोग, यज्ञशाला तैयार है। लेकिन चलो, ये तो इसने ये सोचा था कि शायद मेरे पिताजी व्यस्तता के कारण मुझे भूल गए होंगे, आखिर तो मेरे पिता है ना, बिना निमंत्रण के भी चली गई तो क्या होगा, और इस सुंदर भाव से वो गई है। लेकिन वहां जाने के बाद देख रही है कि वो पिताजी को मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिताजी उसको अवॉइड कर रहे हैं, पिताजी उसको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। फिर भी एक दो बार तो उसने सहम गई कि शायद व्यस्तता में कई बार होता है कि ये काम पहले इम्पोर्टेंट है, दो तीन चार बार, आखिर तो उसकी हद पार कर गई। आई कांटेक्ट करने जा रही तो आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, चलो आप काम में बिजी हो कम से कम आंख से आंख तो मिला सकते हो, वो भी नहीं। और उसको समझ में आ गई बात कि इस घर में पिता के दिल में मेरे लिए अभी कोई स्थान नहीं है, और देखा वहां मेरे प्राणेश्वर के लिए, शिवजी के लिए भी कुछ स्थान नहीं है। और इतना ही नहीं, पिता ने सिर्फ इग्नोर नहीं किया, सिर्फ आई कांटेक्ट से नहीं बचाया, क्योंकि इसने जब स्थिति भापी तो इससे भी रहा नहीं गया, गरम ये भी हो गई। और गरम में तो फिर बोलते हैं हम भी, पिता को कह दिया तुम्हें पुत्री याद नहीं आई, और तुमने किसको, कम से कम चलो मैं याद नहीं, मेरे पति देव तुम्हें याद नहीं आए, शिव जी कोई साधारण है? वो पूरे सृष्टि का नियंता है। ब्रह्मा भी जिसको मानता है, ब्रह्मा भी माना उसका विरोधी दुनिया में कोई नहीं है। यहां तक कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्य जो भी राक्षस हुए वो भी शिव भक्त हुए हैं, और तुम इतना विमुख शिव से। और उसको कुछ कुछ बातें कही, क्योंकि इसने जब थोड़ा गर्म होके बोलना शुरू किया, उसने भी कटु वचन बोलने शुरू किए पिता ने उस शिव जी के प्रति। क्योंकि वैसे ही धारणा क्या है, वो शिव जी जिसका कोई घर बार नहीं है, क्योंकि देह ही नहीं है, तो जिसका कोई घर बार नहीं, जिसके कोई रिश्ते नाते नहीं, जो शमशान में रहता है, जहां देखो वहां घूमता है, बबूती रमाते रहता है, भूत पिशाचों के साथ रहता है, क्या है उसके पास? क्योंकि दक्ष को द्वेष क्यों था कि इस यज्ञ के पहले एक यज्ञ हुआ था जो ब्रह्मा ने आयोजित किया था, और उसमें ब्रह्मा ने दक्ष को, सती को, शिव को, सबको निमंत्रण दिया था। लेकिन जैसे कहा ना, दक्षता जितनी ज्यादा बढ़ती है, जितनी ज्यादा पोजीशन मिलती है, उतना ज्यादा अहम भी ऊंचा होता है। तो इसको प्रजापति का रोल मिला हुआ था, तो देवताएं भी उसको नमन करेंगे। तो उस यज्ञ में जब प्रजापति, क्योंकि वैसे भी बड़ा व्यक्ति तो पीछे आता है ना, पहले सब इकट्ठे हो जाए, तो सब एकत्रित हो गए, प्रजापति पीछे आया, और जब देखा कि उसके सम्मान में सब लोग उठे, ब्रह्मा भले नहीं उठे, तो कहा वो तो मेरे ही पिताजी है ना, और विष्णु को तो वो गुरु मानता था, अपना इष्ट मानता था, वो भी नहीं उठे तो ठीक है, लेकिन शिव जी वो तो मेरा जामाता है ना, वो तो मेरा जामाता है, दामाद है मेरा, तो उसको तो मेरे सम्मान में उठना चाहिए था, मैं प्रजापति हूं, सब लोग उठे, ये नहीं उठे। वो बात को लेकर उसके अंदर में शिव जी के प्रति द्वेष था। जब इंसान अहंकार में आता है ना, जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा दूसरों से रिस्पेक्ट पाने का भूखा। भौतिक अचीवमेंट्स बहुत है, लेकिन भूख है अभी रिस्पेक्ट पाने की। तो वो उसकी भूख वहां तृप्त नहीं हुई, वहां पर भी उसको दो चार शब्द कटु वचन बोले, पर फिर भी उसके अंदर में शांति नहीं आई। और जैसे हम कभी कह देते ना, जो हमारे अनुकूल काम नहीं, मैं देखना एक दिन मैं तेरे को ऐसा दिखाऊंगी, और हम एक दिन कुछ आयोजन करके उसको दिखा देते हैं। उसने भी वहां पे ठान ली थी, क्योंकि वहां उसको दिल नहीं भरा दो चार शब्द कटु वचन सुना के। इसने आयोजन जो यज्ञ का किया था, जिसमें सती और शिव को इन्विटेशन नहीं दिया था, उसके पीछे द्वेष ही था। उसने वो फिर जब सती ने पूछा तो सारा बता दिया, वो जामाता जिसको अपने ससुर का रिस्पेक्ट करने नहीं आता है, तो ऐसे बहुत सारा बोला। सती को आखिर लगा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, पर मैं अभी जाऊं भी वहां पर, वो तो मुझे दक्ष पुत्री कहेंगे, दक्ष पुत्री कहेंगे, यही तो बोल के गई ना मैं, आखिर उसकी पुत्री हूं, तो अभी जाके जाएगी तो क्या सुनाएगा, बोलो दक्ष पुत्री। तो बोला कि अब मैं दक्ष पुत्री कहलाने के लिए भी मुझे लज्जा आती है, दक्ष पुत्री कहलाना और मर जाना एक ही बात है। और इसलिए कहते हैं वहां पे उसने क्या किया, कहते उत्तर की दिशा में बैठ गई यज्ञ की, और योग अग्नि प्रज्वलित की, और उसमें ही भस्म हो गई। ये क्या है? ये हमारा है जो हमने पहले दिन आपको कहा था, भट्टी में आए हो अंतर्मुखी होकर रहना, मन के मौन को धारण करना। क्या होता है अंतर्मुखी होना, क्या होता है मन का मौन धारण करना, सिंप्लीफाई करके दिया था। मन बुद्धि जो इंद्रियों के गलियारे में आकर खड़े हो जाते हैं और अंदर की दुनिया से डिस्कनेक्ट, बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। सती कैलाश पर शिव जी के साथ थी ना, थोड़ी सी वॉकिंग पे गई, मन बुद्धि वहां से हटकर बाहर की दुनिया में गई, देखा, फिर समाचार पता करवाया, वहां से पूरा ही कनेक्शन तोड़ के वहां चली गई, बाहर मुखी हो गई। समझ में आ रही बात? बाहर मुखी हो गई और वो उसका नतीजा कहां तक पहुंचा? अपमान ही अपमान, न सिर्फ खुद का अपमान, अपने पति का अपमान, भरी सभा में, वो भी अकेले में अपमान और भरी सभा में अपमान, इन दोनों में भी बहुत अंतर होता है। और तब कहा कि अब जीना मुश्किल है, किस मुंह से मैं शिव जी के पास जाऊंगी। ये है रियलाइजेशन हमारी। अरे मैं बाहर मुखी हो गई, फिर इधर उधर की बातों में बस गई, मैं भट्टी करने आई थी, मैं बॉडी कॉन्शियस में आ गई, अटेंशन लूज हुआ, वापस अटेंशन को टाइट करो। और अटेंशन को टाइट किया मतलब ही वापस अंतर्मुखी हो गई, वापस ये जो मन बुद्धि ऐसे किए हुए थे, फेस इधर पीठ इधर, उसने कहा उत्तर दिशा में बैठ गई, अर्थात यू टर्न मारा। उत्तर दिशा मतलब क्या? ये ऊपर है और सारी इंद्रियां नीचे हैं, दक्षिण है ये उत्तर, नीचे को दक्षिण कहते हैं, ऊपर को, कि जो ध्यान इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों से कनेक्ट हुए और फिर बाहर की दुनिया से कनेक्ट हुए, कितनी गड़बड़ हो गई, कितनी गड़बड़ हो गई। अब कहा नहीं मुझे वापस सोल कॉन्शियस बनना है, यहां पे ध्यान को केंद्रित करना है। तब बताते जब उसने योग अग्नि प्रज्वलित करके उसमें भस्म ही, मतलब अपने को भस्म किया, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को गलाया, उसको जलाया, सोल कॉन्शियस में आ गई। और जैसे ही सोल कॉन्शियस में आई, शिव जी से कनेक्ट होना आसान हो गया और उसे कम्युनिकेट करना आरंभ किया कि आपने मुझे अलर्ट तो किया था लेकिन मैं कैसे स्लिप हो गई। और जब मैं स्लिप हो गई सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई, तो मेरी क्या दुर्दशा हो गई, अब तो आप ही मुझे प्रोटेक्ट करो, रक्षा करो। तब कहा कि वीरभद्र आया वहां पे रक्षा करने के लिए। वीरभद्र कोई और नहीं, वीर माना क्या होता है? जिसमें वीरता है। भद्र माना क्या होता है? सज्जन, मित्र, मतलब ऐसा सज्जन जिसके पास वीरता हो, जो हमारा भला करे। तो भगवान शिव जी अपने डिवाइन पावर, डिवाइन रेस देना हमको आरंभ करते हैं, जिसके आधार से बॉडी कॉन्शियसनेस के जो बीज अंदर में पड़े हैं, जिस कारण से हम बार बार सोल कॉन्शियस से हट हट के बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर स्लिप हो जाते हैं, उन पे वो किरणें, वो सकाश देता है और वो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस वाली विकारों की लेयर क्या होती है? भस्म होने लगती है। और तब कहा कि फिर उस सती ने दूसरा जन्म लिया पार्वती के रूप में। और पार्वती के रूप में जब दूसरा जन्म लिया है, तो वहां तो वो दक्ष पुत्री थी सती के रूप में, लेकिन पार्वती के रूप में वो हेम पुत्री, पर्वत पुत्री बनी है। अर्थात क्या? दक्ष पुत्री थी दुनियावी टैलेंट का, ईगो उसका इन्फ्लुएंस था सात्विकता के ऊपर, डिविनिटी के ऊपर, और उसका असर ये हुआ बॉडी कॉन्शियसनेस में स्लिप हो गई, फिर गरम भी हो गई, कटु वचन भी बोल डाले, और इसलिए उसने वहां से रियलाइजेशन किया। कान भट्टी में एकांत क्यों दिया गया था? ज्ञान सुनते जाओ, चेकिंग करते जाओ, रियलाइज करते जाओ, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते जाओ और दृढ़ संकल्प को परमात्मा की सकाश देकर फलीभूत होने में मदद करो। तो इसने रियलाइज कर लिया था कि दुनियावी टैलेंट्स, बॉडी कॉन्शियसनेस कैसे मुझे उसने गरम भी बना दिया, कटु वचन भी बुलवा दिए। अब मुझे परिवर्तन करना है, बुद्धि अपनी चलाई, क्योंकि जैसे ही देखा देवताएं जा रहे हैं सच दच के, बुद्धि चलायमान हुई, मैंने भी जाना है। सिर्फ देखा और सुना, इनविटेशन नहीं मिला है, देखा और सुना, मन बुद्धि चलायमान हुए, डोलायमान हुए और चल पड़ी। कैसे हालत हुई, तो यहां से उसने सबक लिया, अब मैं मन बुद्धि हिले नहीं, मुझे स्थिर रखना है। इसलिए पर्वत पुत्री बनी। पर्वत माना क्या, जो अटल रहता है, जो अडोल रहता है, जो अचल रहता है। और उस पर्वत में भी पर्वत तो अनेक होते हैं, हिमालय वो शीतल भी रहता है। उसने वहां चेक किया, मैं गर्म हो गई थी, शायद गर्म नहीं होती तो इतनी और बात नहीं बिगड़ती, अब मुझे शीतल रहना है। ये उसने वहां से परिवर्तन रियलाइज किया कि मुझे ये परिवर्तन अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। और इसलिए पर्वत पुत्री बनी और उसमें भी कहा कि पार्वती, क्योंकि परिवर्तन जिसने रियलाइज कर लिया है कि मुझे जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जो बार बार मैं स्लिप हो रही हूं, मुझे सोल कॉन्शियस स्थिति में अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने की आवश्यकता है। तब पार्वती, और कहा कि उसने भी तपस्या शिव जी को पाने के लिए की, उसने भी बुद्धि में यही एम रखा था, मेरा होने वाला पति तो शिव जी ही है। कि अब परिवर्तन के बाद हमको यही शिकायत है ना, हम योग तो करते हैं लेकिन बहन जी वो कुछ पलों के लिए ही शायद अनुभूति होती है, बाकी तो इधर उधर का ही सब होता है। वो अतीन्द्रिय सुख जो हमें अनुभव करना चाहिए शायद ही कुछ एक दो क्षण होते होंगे, और वो भी तब जब कोई हमारे को बहुत सुंदर कमेंट्री दे रहा हो, उस कमेंट्री के बल पे नहीं। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे अभ्यास डलवाया, अपनी घोट तो नशा चढ़े, डिपेंडेंसी से कभी काम नहीं बनता है। अभी तो बड़े हो गए हैं ना, अभी भी प्राइमरी में रहना है क्या, जामड़े रहना है क्या? इसलिए एकांत का समय, कि ज्ञान बहुत सुन लिया, कमेंट्रियां बहुत सुन ली, स्वरूप बनने की आवश्यकता है। कौन सी चीजें बाधा डाल रही है, क्या मेरे अंदर अभी भी कमियां हैं, उसको एकांत में बैठकर ज्ञान को सुनकर चेकिंग करो, रियलाइज करो और परिवर्तन का दृढ़ संकल्प। तब कहा पर्वत पुत्री के रूप में जन्म लिया, फिर तपस्या बढ़ाई और फिर से शिव पार्वती का मिलन हुआ है और गणेश आदि बच्चे हुए। और वो बच्चे मतलब कुछ नहीं, हमारे जीवन में गुण, अच्छे गुण बढ़ते गए बढ़ते गए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? तो भट्टी में ये किया हाँ, किया कि बार बार स्लिप हो जाते थे, बार बार यू टर्न इधर और उधर हो रहा था कभी इधर फिर कभी इधर फिर कभी इधर फिर कभी इधर हाँ नहीं नहीं देखो एक बात मैं कहती हूँ, जब मोबाइल को चार्ज रहती है ना तो हम उसको यूज करते हैं, तो उसको चार्जिंग की हम कोई कोई बार बार संकल्प नहीं करते हैं। 90 चलेगा, 80 चलेगा, 70 चलेगा, 50 40 चलेगा, 30 चलेगा, 20 अभी 10%। तो फिर चार्जिंग की रियलाइजेशन महसूस होती है। ऐसे भी भट्टी पूरी हो गई ना इसलिए रियलाइजेशन हो रही है। भट्टी के शुरू में कराते ना, ये तो क्लासेस कराते रहेंगे हमको, क्या हम क्या रिफ्रेश होने नहीं है क्या, किसी से बात नहीं करेंगे क्या। हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं लिया, बेशक हम दो दो तीन तीन साल के बाद आते हैं तो अवश्य एक दूसरे से मिलने की भी इच्छा होती है। हाँ, मधुबन वालों से भी कहें या आपस में भी कहें, तो अवश्य जितना हो सके हर एक ने जब तीन चार दिन की जिम्मेवारियां हम उनसे मुक्त होकर यहाँ आते हैं तो अवश्य ही समय सफल करने के लिए आते हैं, हम सभी अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। परंतु फिर वो भी तो बातें होती है ना, मिलना भी तो है, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है। तो एसेंस में मैं ये कहूँगी कि अब जब लौट रहे हैं तो एक दृढ़ संकल्प करके जाओ कि हम सप्ताह में हो सके तो एक बार, हो सके तो 15 दिन में एक बार, हो सके तो मास में एक बार, हो सके तो 2 मास में एक बार फुल मौन। और जो पता है मौन माना ही अब यहां से हटकर अंदर, तभी हमारी चेकिंग होगी। हमें चेक करना है, जैसे उसने चेक किया, एक तो मैंने अपनी बुद्धि चलाई, मेरी बुद्धि क्यों चलायमान हुई, क्यों डोलायमान हुई, मैंने देखा सुना, इंद्रियों की तरफ आकर्षित हो गई मैं, फिर मैं गर्म हो गई, कटु वचन बोल दिए, अब मैं उस समाज में रहने लायक ही नहीं रह गई। हमारे जीवन में भी तो ऐसी ही घटनाएं घटती है ना, तो हम अपने आप को चेक करें, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांति प्रेम खुशी आनंद मेरे नेचुरल संस्कार है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। ये तो रावण वाले संस्कार है जिसको आज हम मेरे संस्कार कह रहे हैं। तो वो एकांत में बैठकर स्वयं से स्वयं चेकिंग, रियलाइजेशन, फिर उस रियलाइजेशन के साथ फिर उसके साथ कनेक्ट होना, फिर उसको अपनी गलती बताना, मेरे से ये गलती हुई है बाबा। वही कहते ना मुझे, लोग कहते बहन जी लेटर में क्या लिखना है, यही सब लिखना होता है, यही सब लिखना होता है। बाबा हम इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, लेकिन अभी लगता है थोड़े थोड़े हाफ कास्ट है। है ना, ये रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ये परिवर्तन, ये रियलाइजेशन दूसरे की कमेंट्री से नहीं होने वाला है, ये खुद खुद से होने वाला है। और दूसरे की कमेंट्री आपको एक सैंपल दिया जा रहा है, ऐसा करना होता है, पर आपको बस वही लकड़ी लेकर अभी मुझे चलना है, इट इज नॉट राइट। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे ना, किसी भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया था मनसा सेवा का, तो मैंने कहा मैं क्लास में क्लियर कर दूंगी। तो जब हम इतना अभ्यास करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस को ड्रॉप करेंगे, अपनी कमी कमजोरियों को विकारों को दग्ध करेंगे, तो एकांत में जब हम बैठते हैं ना, जैसे शरीर में भी कुछ जर्म्स है, बैक्टीरियाज हैं कुछ, तो क्या कहते हैं, सूर्य स्नान ले लो, सूर्य की गर्मी, सूर्य का ताप, सूर्य की किरणें आपके अंदर के बलगम को कहो, बैक्टीरियाज को कहो, जर्म्स को कहो, क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ऐसे हमारे अंदर भी आत्मा के ऊपर का जगह हो, मतलब दबी पड़ी है ऊपर, तो विकारों की लेयर है, तो वो विकारों की लेयर कनेक्ट हुए बिना कैसे, वो सूर्य स्नान, ज्ञान सूर्य का सूर्य स्नान करेंगे, उस सूर्य की किरणें आत्मा पर पड़ेगी, ऊपर तो लेयर है ना विकारों की, तो वो उसको दग्ध करेगी ना। तो जब वो दग्ध होगी तो आत्मा के ऊपर ये जो विकारों का काला पर्दा चढ़ा हुआ है वो काली मा सब निकल जाएगी, जो पर्दा है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट आत्मा से, आत्मा तो है ही पवित्र, आत्मा तो है ही प्रेम स्वरूप, आत्मा तो है ही दिव्यता का स्वरूप, आत्मा तो है ही आनंद स्वरूप, तो वो ट्रांसपेरेंट जब हो जाएगा वो पर्दा, वो कांच, तो आत्मा तो जो उसके पास गुण है वो बाहर आना आरंभ हो जाएंगे, बाहर आना आरंभ हो जाएंगे। तो हमारी मनसा सेवा में न भी बोलूं कि मेरी किरणें उसके पास जा रही तो भी जाएगी। मैं सूर्य के पास बैठू हूं और मैं कहूं सूर्य की किरण मेरे पास आ रही है तो ही आएगी, या बिना बोले भी आ जाएगी। लेकिन मैं कमरे के अंदर बैठी हूं, दरवाजे बंद करके बैठी हूं, सूर्य की किरण मेरे पास आ रही है तो भी नहीं आने वाली है। समझ में आ रही बात? तो जो रास्ते में ब्लॉकेज है उसको हटाना पड़ेगा ना। तो मनसा सेवा का मतलब भी सेवा ही है, लेकिन मन बुद्धि से, और इसलिए मन बुद्धि में वो विकारों की मैल नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट कांच, ये बल्ब है घर में भी, अंदर में फिलामेंट है, जब हम स्विच ऑन करते हैं फिलामेंट से प्रकाश निकलता है या कांच से निकलता है? कांच तो सेफ्टी के लिए ऊपर कवरिंग है ना, तो जलता कौन है, प्रकाशित कौन होता है? वो फिलामेंट। लेकिन प्रकाश का स्वभाव है आवागमन, वो गमन करता है, और चूंकि कांच जो उसके रास्ते में है वो ट्रांसपेरेंट है, इसकी प्रकाश उसको भेद कर आगे जा रहा है। लेकिन यही बल्ब आपके अगर किचन में लगा हुआ हो, सब्जियों को छौंक लग रहे हैं, चाय बन रही है, सीटी कुकर की बज रही है, भाप लग रही है, थोड़े ही दिन में वो क्या हो जाएगा? अब उतना प्रकाश मिलेगा जब ट्रांसपेरेंट था उतना, और अगर बहुत दिन हो गए बिल्कुल नहीं सफाई किया, जलते हुए भी लगेगा जला नहीं है। लेकिन अगर मैंने साफ कर दिया और स्विच ऑन है, अगर साफ नहीं किया, मैंने कहा प्लग चालू है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू है, अब भी आई रोशनी, अब भी आई रोशनी, अब भी आई किरण, मेरे बोलने से भी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने कांच को साफ कर दिया, अब मैं ना भी बोलूं तो भी उसमें से प्रकाश की किरणें आएगी ही आएगी। तो मनसा सेवा का एसेंस इतना ही है, एक है वाचा सेवा, एक है कर्मणा सेवा। वाचा स्पीच के द्वारा, वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा। कर्मणा, कर्म ऐसे करे कि जिसमें गुणों की झलक मिले, तो वो कर्मणा सेवा। मनसा सेवा कि मन बुद्धि इतने प्योर हो, जो मैं खुद से भी कनेक्टेड हूं और शिव पिता से भी कनेक्टेड हूं, तो पावर हाउस की लाइट मुझसे गुजरते हुए सारे संसार को फैल रही है। मैं नहीं भी बोल रही हूं कि मैं शिव से जुड़ी हूं, मेरे पास किरणें आ रही है, मेरे से निकलकर ग्लोब पर पहुंच रही है, ना भी बोलूं तो पहुंचने वाली है। लेकिन इधर क्लीन नहीं किया है उसके साथ, जब खुद क्लीनिंग नहीं है तो खुद से ही कनेक्शन में टाइम लगता है। तभी तो यही शिकायत है, बहन जी योग में ऐसे नहीं बैठेंगे, कमेंट्री होना। हाँ, खुद से ही कनेक्ट होने में मेहनत लग रही, तो उधर की कनेक्शन की तो बात ही दूर है, पावर ही नहीं आएगी। क्या आप कितना भी बोलो मेरी किरणें जा रही है, नहीं जाने वाली। बेशक जैसा सोचते हैं वैसा होता है, पर उतनी कन्विक्शन के साथ जब बोलेंगे ना, लेकिन अंदर तो हिल रहा है, इसीलिए तो प्रश्न आते हैं लोगों के कि बहन जी मैं अगर ऐसे सोच रहा हूं कि मेरी किरण उसको सच में पहुंच रही है क्या, मतलब तो संशय है ना। तो अभी थॉट जैसा सोच वैसी सृष्टि बनेगी, परंतु आपका सोच ही तो संशय वाला है। अभी कौन सी सृष्टि बनने वाली है आपकी? तो सिंपल है, जो लाइट हाउस माइट हाउस बनने की बात है, वो सारी बात है ये आत्मा के ऊपर चित्त रूपी जो पर्दा है, जो कांच है, जहां पर यहां का डेटा इंद्रियों के माध्यम से अंदर जाता है और बॉडी कॉन्शियस होने के कारण विकारों के ऊपर विकार अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हम ऐसे ऐसे कर्म, वो सारे विकार भी उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, उसकी क्लीनिंग की आवश्यकता है। जैसे क्लीन हो जाएगा, आत्मा तो अंदर चमक ही रही है, मनसा सेवा ना भी बोले चलते फिरते हमारी होगी। ये खिड़की है, यहां पे मैं हेलोजन जलाती हूं, अभी सपोज खिड़की का कांच ट्रांसपेरेंट है, बाहर कोई खड़ा है उसको हेलोजन की रोशनी दिखेगी या नहीं दिखेगी? हम आंख को कहते हैं खिड़की है हमारी, लेकिन अंदर जो आत्मा है और ये खिड़की के बीच में चित्त रूपी जो पर्दा है, अगर वो काला है, यहां से किरण सामने वाले को कौन सी मिलेगी? वो आत्म ज्योति उसके पास पहुंचेंगे। तो मनसा सेवा माना दृष्टि से सेवा, चलन से सेवा, चेहरे से सेवा, मौन सेवा, साइलेंट सेवा, और उसके लिए चाहिए स्थिति, और उस स्थिति को बनाने के लिए भट्टी का अवसर मिला सभी को। और हम समझते हैं सबने अपने अपने रीति से भरसक प्रयास किया कि हम आए हैं भट्टी में, जितना हो सके हम लाभ लें, लेकिन अब यहाँ से एक संकल्प भी करके जाओ, जीवन में एकांत को महत्व देना है, और उस एकांत में मैं और मेरा बाबा, कमेंट्री भी कोई तीसरा है, कमेंट्री भी कोई तीसरा बीच में है, मुझे कोई नहीं चाहिए बीच में, मैं और मेरा। तब सचमुच हम शिव शक्ति बनकर बहुत जल्दी इस धरती को स्वर्ग बना लेंगे, जो आजादी के आंदोलन का भी अभी नारा वही है, और बाबा भी बता दिया, इशारा दे दिया, एग्जाम पास में है, एग्जाम के बाद तो स्वर्ग ही आने वाला है, पर उस स्वर्ग में क्या तुम्हारी पोजीशन होगी, तैयारी कर लो, है ना, उसी के लिए समय मिला है। तो हम एकांत को महत्व दें, क्लीनिंग तभी होगी, परिवर्तन तभी होगा, हम चलते फिरते बाबा के लाइट हाउस माइट हाउस चैतन्य म्यूजियम होंगी, जो हमको कोई देखेगा हमारी दृष्टि से, उन दृष्टि से बाबा कहते हैं ना, नजर से निहाल हो जाएंगे, बोलने की भी मार्जिन नहीं, नहीं उस समय कोई संकल्प करने हैं, आत्मा प्योर है, पर्दा चित्त रूपी साफ है, निकल ही रही है प्योरिटी और प्यार और आनंद और शक्ति। क्या बोलूं कि इसको शक्ति मिले और इसको प्रेम मिले? कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जितना एकांत में होंगी वो किरणें बिना हिले आप तक पहुंचेगी, वरना हिलने से इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी हमें करना है, ऐसी प्रेरणा इस भट्टी से लेके जाना, और शाम तक जब तक जाओ जाओ तब तक जो भी कठड़ी है बिना काम की बाबा को देखे जाना। ओम शांति।